क्लिप नंबर 184। इस क्लिप में आप सूरह निसा की आयत नंबर 31 से 33 की तिलावत, तर्जमा और तफसीर तालिबुल कुरान से, कबीरा गुनाहों से बचने की फजीलत, हसद की ममानअत, मर्द और औरत में से हर एक अपने नेक आमाल की जजा पाएगा, अल्लाह ताला से उसका फजल मांगा जाए, अल्लाह ताला हर चीज जानता है, सुनेंगे। आयत नंबर 31।
इन تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما।
अगर कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जाता है तो हम तुम्हारे दूसरे गुनाह बख्श देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। बाज़ कबीरा गुनाहों पर वईद सुनाने के बाद इस आयत में कबीरा गुनाहों से बचने पर सगीरा गुनाह बख्शने और इज्जत की जगह दाखिल करने का वादा जिक्र किया गया है। चुनाचे फरमाया गया कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और दीगर इबादात बजा लाते रहो तो हम तुम्हारे दूसरे सगीरा गुनाह अपने फजल से माफ़ फरमा देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह जन्नत में दाखिल करेंगे। अहम बातें। नंबर एक, कबीरा गुनाह वो है जिसका मुर्तकिब कुरान और सुन्नत में बयान की गई किसी खास सख्त वईद का मुस्तहिक हो, जैसे अल्लाह ताला का शरीक ठहराना, जानबूझकर नमाज छोड़ देना, जकात अदा न करना, रमजान का रोजा छोड़ देना, कुदरत के बावजूद हज न करना, शराब बनाना, बेचना, पीना, नाप तोल में कमी करना और यतीम का माले नाहक खाना वगैरह। नंबर दो, कबीरा गुनाह सच्ची तौबा से ही माफ होते हैं, अलबत्ता हज मकबूल पर भी कबीरा गुनाह माफ होने की बशारत है। नंबर तीन, गुनाहों की माफ़ी और जन्नत में दाखिला अल्लाह ताला की मशीयत और मर्जी पर है। वो जिस मुसलमान के चाहे गुनाह मुआफ़ कर दे और जिसके चाहे ना करे, जिसे चाहे जन्नत में दाखिल करे और जिसे चाहे ना करे। हाँ, उसने जिस अमल पर जो वादा फरमाया है उसे वो अपने फजल करम से पूरा फरमाएगा, क्योंकि वादे की खिलाफ वर्जी उसकी शान के लायक नहीं। आयत नंबर 32।
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا।
और तुम उस चीज की तमन्ना न करो जिससे अल्लाह ने तुम में एक को दूसरे पर फजीलत दी है, मर्दों के लिए उनके आमाल से हिस्सा है और औरतों के लिए उनके आमाल से हिस्सा है, और अल्लाह से उसका फजल मांगो, बेशक अल्लाह हर शय को जानने वाला है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ खूबियों से नवाजा है जिनमें कुछ तब्दील नहीं हो सकती, जैसे रंग, रूप, आवाज, कद, मर्द और औरत का फर्क वगैरह, और कुछ चीजें वो हैं जिनमें इंसानी कोशिश से तब्दीली हो सकती है, जैसे मालो मनसब वगैरह, जहाँ कोशिश काम कर देती है। हसद तो वहाँ भी नहीं किया जाएगा, लेकिन वहाँ जायज तरीके से कोशिश की जा सकती है। लेकिन जहाँ जायज तरीके से तब्दीली नहीं हो सकती, जैसे औरत खुद को मर्द बना ले, तो ऐसी जगह एक दूसरे पर ना तो हसद किया जाए और ना ही अपने दिल में फजूल तमन्नाएं पाली जाएं कि इससे एहसास कमतरी, खुदा के फैसले पर राजी ना होना और जिंदगी तकलीफ में पड़ जाने का अंदेशा है। इन सूरतों में राह आफियत यह है कि अल्लाह ताला ने जिसे जो फजीलत दी उसे ऐन हिकमत समझते हुए बंदा अल्लाह की रजा पर राजी रहे। मजीद फरमाया, मर्दों के लिए उनके आमाल से हिस्सा है। आयत के इस हिस्से का शान नुज़ूल यह है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अगर हम भी मर्द होते तो जिहाद करते और मर्दों की तरह जान फिदा करने का सवाब अजीम पाते। इस पर उनकी तस्कीन के लिए फरमाया गया कि मियां बीवी में से हर एक को उसके अपने नेक आमाल की जजा मिलेगी। मर्द जिहाद से सवाब हासिल कर सकते हैं तो औरतें शोहरों की फरमा बरदारी और पाक दामनी से सवाब हासिल कर सकती हैं। और फरमाया कि अल्लाह ताला से उसका फजल मांगो कि हकीकत में सबसे बड़ी चीज उसका फजलो करम है। आमाल में किसी को लाख गुना ज्यादा सवाब मिले तब भी वो फजले इलाही का मोहताज है, क्योंकि जन्नत में दाखिला महज फजले इलाही से होगा। बेशक अल्लाह ताला हर शय को जानने वाला है, वो जानता है कि कौन दूसरे पर फजीलत का मुस्तहिक है और उसे ये भी मालूम है कि मांगने वाले के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। अहम बातें। नंबर एक, किसी के पास कोई नेमत देखकर तमन्ना करना कि ये नेमत उससे छिन कर मुझे मिल जाए हसद है, और हसद हराम है। अगर उससे नेमत छिन जाने की तमन्ना ना हो बल्कि ये आरजू हो कि उस जैसी मुझे भी मिल जाए तो ये गिबता है, ये मजमूम नहीं। नंबर दो, दिल के सब्र व करार का नुस्खा रज़ा इलाही पर राजी रहना है। अगर दिल को आरजुओं और तमन्नाओं का मरकज बनाए रखा तो हजारों नेमतें पास होकर भी दिल को करार नहीं मिल सकता। हदीसे पाक में है, तुम अपने से नीचे वाले को देखो और जो तुमसे ऊपर हो उसे ना देखो, یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمت کو حقیر جانو. آیت نمبر 33.
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.
اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑیں ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے ہیں, اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو, بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے. فرمائے کہ ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑ جائیں ہم نے سب کے لیے اس مال میں حقدار بنا دیے ہیں, اور جن سے تمہارا معاہدہ یعنی عقد موالات ہو چکا ہے انہیں میراث میں سے ان کا حصہ دو, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے معاہدوں سمیت ہر شے پر گواہ ہے. اہم بات, عقد موالات کی صورت یہ ہے کہ ایسا شخص جس کا نسب معلوم نہیں وہ دوسرے سے کہے تو میرا مولا ہے, میں مر جاؤں تو میرا وارث ہوگا, اور میں کوئی جرم کروں تو تجھے دیت دینی ہوگی, دوسرا اسے قبول کر لے تو یہ عقد صحیح ہو جاتا, قبول کرنے والا وارث اور دیت کا ذمہ دار بن جاتا ہے. اگر پہلا شخص بھی اسی طرح کا ہو اور دوسرا بھی یہی کہے اور یہ قبول کر لے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا وارث اور دیت کا ذمہ دار ہوگا.